नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला में एक के बाद एक शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त, राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के कार्यान्वयन से पहले 3 दिन की यात्रा पर ब्रिटेन जाएंगे। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अमेरिका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ईरान में निरीक्षण करेगी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और मोरक्को नॉकआउट चरण में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला में आज 7.2 और 7.5 तीव्रता के लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप आने के बाद देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। भूकंप के कारण राजधानी काराकास और आसपास के क्षेत्रों में कई इमारतें ढह गई हैं और बड़े स्तर पर जानमाल का नुकसान हुआ है। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स ने विद्यार्थियों की कक्षाएं और गैर जरूरी गतिविधियां अगले आदेश तक स्थगित करने की घोषणा की है। प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। अधिकारियों के अनुसार पहला भूकंप सैन फिलिप क्षेत्र में आया, जिसके केवल 39 सेकंड बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा और अधिक शक्तिशाली भूकंप आया। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। उधर जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 6.9 थी। जापान के मौसम विभाग ने बताया है कि भूकंप का केंद्र इवाते प्रांत के तट से 50 किलोमीटर दूर समुद्र में था। टोक्यो में भी हल्के झटके महसूस किए गए। हालांकि सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है और न ही किसी के हताहत होने की खबर है। इस बीच जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने भूकंप के मद्देनजर एक कार्य दल का गठन किया है। विभाग ने और भूकंप के झटके आने की आशंका व्यक्त की है। प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों, विशेषकर पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीषा।
भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपू लेक दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभी डांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी की की गई है।
गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहां पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घुड़े कचरों को लेकर पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP आर्मी व्यापारी और प्रशासन की, उसमें भी एक आपसी सहमति से नाविडांग के समीप ही एक पड़ाव चयनित किया गया है।
गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई राष्ट्रीय रणनीति की घोषणा की है। इसका उद्देश्य प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने की क्षमता मजबूत करना है ताकि कोई भी प्रतिद्वंद्वी, संकट या व्यवधान अमेरिका के प्रमुख हितों को प्रभावित न कर सके। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
फीफा विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल कर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इससे पहले मैक्सिको ने आज सुबह मैक्सिको सिटी में चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच जीतकर पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला में एक के बाद एक शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त, राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अमल से पहले 3 दिन की यात्रा पर ब्रिटेन जाएंगे। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और मोरक्को नॉकआउट चरण में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।